रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कर्णाली प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए परसों शाम 5 बजे तक दावा पेश करने का प्रदेश प्रमुख का आह्वान। कैलाली के धनगढ़ी में आमरण अनशन पर बैठे डॉ गोविंद केसी और सरकारी वार्ता दल के बीच बातचीत का दौर हुआ शुरू। नेपाल भारत सीमा पर संभावित अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए सशस्त्र प्रहरी बल का सीमा संवाद समूह है तैनात। और तेज हवाओं के कारण जंगल की आग फैलने से फ्रांस में 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी ने नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रदेश सभा सदस्यों से दावा पेश करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री यामलाल कड़ेल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रदेश प्रमुख ने संविधान के अनुच्छेद 168 की उपधारा 2 के तहत 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बहुमत जुटाने में सक्षम सदस्य 12 श्रावण शाम 5 बजे तक दावा पेश कर सकेंगे। 40 सदस्यीय प्रदेश सभा में सरकार गठन के लिए 21 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इस बीच कर्णाली प्रदेश सभा की अगली बैठक 14 श्रावण को दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। कैलाली के धनगढ़ी में आमरण अनशन पर बैठे डॉ गोविंद केसी की मांगों को लेकर सरकारी वार्ता दल और उनके प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के स्वास्थ्य सलाहकार डॉ जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय के सचिव डॉ विकास देवकोटा और शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव चूड़ामणि पौडेल वार्ता में शामिल हैं। डॉ केसी का उपचार सेती प्रादेशिक अस्पताल में चल रहा है, जहां उनके प्रतिनिधियों से पहले चरण की बातचीत हो रही है। डॉ केसी पिछले गुरुवार से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर हैं। उनकी प्रमुख मांगों में गेटा शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा आयोग में नियम विरुद्ध नियुक्तियां रद्द करना तथा चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विवादित प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल और कानून न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्री सुविता गौतम ने वर्षा से क्षतिग्रस्त पुष्पलाल राजमार्ग और लामोसांगू जीरी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया है। दोलखा दौरे के दौरान दोनों मंत्रियों ने मोडे चरीकोट सड़क, खिमती क्षेत्र, कालीदह भूस्खलन, तामाकोशी पुल और अन्य प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया। मंत्री लम्साल ने कहा कि मुडे चरीकोट सड़क उन्नयन के लिए निर्माण कंपनी को दिया गया अतिरिक्त समय भी समाप्त हो चुका है और अब कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री गौतम ने कहा कि निर्माण व्यवसायियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक खरीद कानून में संशोधन किया गया है, लेकिन काम में लापरवाही जारी रहने पर कानूनी कार्रवाई होगी। लगातार वर्षा के बाद हुए भूस्खलन से नागमा गमगढ़ी सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है। मुगू जिले के छायानाथ रारा नगर पालिका 8 स्थित झारी खोला में कल सुबह आए बड़े भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई, जिससे यात्रियों और वाहनों को बीच रास्ते में रुकना पड़ा है। सड़क डिवीजन कार्यालय के अनुसार मलबा काफी बड़ा और मार्ग पूरी तरह खुलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों और जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क खोलने का काम जारी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के एमबीबीएस प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने के मामलों में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि नेपाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मंत्री पोखरियाल ने कहा कि सुशासन विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा और विस्तृत जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि 8 सावन को आयोजित एमबीबीएस प्रथम सेमेस्टर की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विषय की परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने वन पर्यावरण कृषि, जल, जंगल और भूमि संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। धनुषा जिले की धनुषाधाम नगरपालिका स्थित सब डिवीजन वन कार्यालय में आयोजित विचार विमर्श एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चौधरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वन और पर्यावरण के संरक्षण के बिना मानव अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। नेपाल भारत सीमा सहजीकरण तथा सीमा क्षेत्रों में संभावित अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण तथा सूचना संकलन के उद्देश्य से सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ने सीमा संवाद समूह तैनात की है। झापा के कांकड़भिट्टा, मोरंग के रानी, परसा के वीरगंज, रूपनदेही के डंडा, बागिक के जमुनाहा, कंचनपुर के गड्डा चौकी तथा कैलाली के गौरीभंटा सीमा नाकों पर सशस्त्र प्रहरी सहायक उप निरीक्षक के नेतृत्व में प्रत्येक नाके पर 14 सदस्यीय टीम तैनाती की गई है। सशस्त्र प्रहरी बल के सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापा ने जानकारी दी कि ये टीम संबंधित क्षेत्रों के सीमा सुरक्षा गुल्म में तैनात रहकर प्रमुख सीमा नाकों पर कार्य करेगी। इसी बीच सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पोडेल ने आज रूपनदेही के डंडा स्थित सीमा सुरक्षा गुल्म से इस टीम की औपचारिक शुरुआत की। आज ही अन्य सीमा नाकों पर भी संबंधित वाहिनी के वाहिनीपतियों ने टीमों की तैनाती का शुभारंभ किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जंगल की आग लगातार फैल रही है। अब तक 2,50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि बोर्डो शहर के आसपास के 50,000 अतिरिक्त लोगों को भी इलाका खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है। इसके चलते बोर्डो से स्पेन की सीमा को जोड़ने वाला A63 राजमार्ग आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है और बोर्डो के दक्षिण में रेल सेवाएं भी रोक दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार आग अब तक लगभग 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस की सबसे बड़ी जंगल की आग माना जा रहा है। गृहमंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने में अभी काफी समय लग सकता है। भारतीय राज्य असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। बाढ़ से 6,54,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और 10 जिलों के 810 गांव अब भी जलमग्न हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रभावित लोगों के लिए 274 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां करीब 19,000 लोग ठहरे हुए हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्णाली प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए परसों शाम 5 बजे तक दावा पेश करने का प्रदेश प्रमुख का आह्वान। कैलाली की धनगढ़ी में आमरण अनशन पर बैठे डॉ गोविंद केसी और सरकारी वार्ता दल के बीच बातचीत का दौर हुआ है शुरू। नेपाल भारत सीमा पर संभावित अवैध गतिविधियों को रोक के लिए सशस्त्र प्रहरी बल का सीमा संवाद समूह है तैनात और तेज हवाओं के कारण जंगल की आग फैलने से फ्रांस में 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।